نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے بہت توجہ طلب ٹاپک ہے اس لیے کہ وہ ہم سب کی زندگیوں سے متعلق ہے اور بہت دن سے میں چاہ رہی تھی کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے کیونکہ خاص طور پہ خواتین کے لیے مردوں کے لیے بھی لیکن خواتین کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کے وقت میں جو سٹریس ٹینشن انگزائٹی ہمارے اندر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے سر پہ سوار ہو گئی اور ہمیں جو اہم کام ہیں زندگی کے ان سے بھی دور کر رہی ہے اتنا زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کامن ہو گئی ہے کہ لوگ آج پتہ چلا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں بریدنگ ایکسرسائزز کے لیے جو مجھے پتہ چلا کوئی سری نام کا کوئی ہے کبھی کوئی کسی نام کا ہے کوئی ہندو ہے کوئی کوئی ہے ان کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں سکون چاہیے اور ابھی ریسنٹلی خبر پتہ چلی ہے کہ حرم میں دو لوگوں نے خودکشی کی تو جو حالات ہماری امت کے چل رہے ہیں بحیثیت امت بھی اور انڈیویجولز بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے وہ جو بھروسہ اللہ پر تھا نا وہ چھوڑ دیا یعنی اس حد تک نوبت آ جانا کہ کوئی اپنی جان خود لے لے تو یہ ایکسٹریم فارم ہے اس چیز کی کہ یعنی اب دماغ نے کام کرنا بند کر دیا یا انگزائٹی یا ڈپریشن اس حد تک بڑھ گیا اور اتنی مایوسی ہو گئی کہ اس کے بعد انسان یہ سوچنے لگے کہ مجھے اپنی جان بھی لے لینی چاہیے اور یہ بھی جائز ہو گیا اور وہ بھی کون سی جگہ اللہ کے گھر میں جا کے اور اس کے علاوہ اور بہت سی میرے پاس چونکہ ای میلز آتی ہیں فون کالز آتی ہیں بہت سارے لوگ اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ٹینشن ہے بہت زیادہ پریشانی ہے شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہر ایک انسان بے سکون نظر آتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایمان کی کمی ہے کیونکہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ایمان کی کمی ہو گئی تو اس لیے ایمان کی کمی اس وقت ہو سکتی ہے جس وقت کوئی خودکشی تک پہنچ جائے لیکن جو ایک انسان ٹینشن میں ہے ضروری نہیں کوئی ایمان کی کمی ہی وجہ ہو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں کہ کیا ویئر آر وی رونگ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت زیادہ پریشانی ہے اس وقت کیا کوئی پریشانی نہیں تھی جس وقت بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا تھا مکہ کی گلیوں میں اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے اور ان کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت کیا کوئی ٹینشن نہیں تھی جب گھر گھر میں جدائیاں ہو گئی تھیں اور ایک بیٹا ماں باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا بیوی شوہر سے الگ ہو گئی ہے ماں باپ ایک دین پہ ہیں اولاد دوسرے دین پہ ہے کیا اس وقت کوئی ٹینشن نہیں تھی کیا اس وقت کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہجرت کرنی پڑی کچھ لوگوں کو جبکہ اس زمانے میں ہجرت بہت بڑی بات تھی آج کی طرح نہیں ہے کہ ہم موو کر کے امریکہ آ گئے تو کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے ویسی نہیں تھی اس زمانے میں کہیں موو کرنا آپ کیا سوچتے ہیں ٹینشنز آج ہی ہیں ٹینشنز ہر زمانے میں رہی ہیں پھر ہم ان سے کیوں نہ سیکھیں کہ انہوں نے ٹینشنز کو کیسے ہینڈل کیا انہوں نے کس طرح ان حالات کا مقابلہ کیا دیکھیں حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہیں گے زندگی میں یہ زندگی جنت نہیں ہے یہ جنت نہیں ہے یہ تو پہلے ہم سمجھ لیں بات اور جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے سب پریشانیاں دور ہو جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے آج پریشانی کسی کو تو اپنے گھر کی یا کسی گھر کے مسئلے کی کسی کی اولاد نافرمان ہو گئی یا کسی کی شوہر کے ساتھ نہیں بنتی کسی کے سسرال کے مسئلے بہت زیادہ ہیں کسی کے فائنینشیل پرابلمس ہیں اور کسی کو ये परेशानी है कि इस वक्त जो दुनिया में हालात हो रहे हैं उसमें हम कैसे सरवाइव करेंगे, जो हम मुस्लिम उम्मा की हालत देख रहे हैं और जो रेफ्यूजीज का हाल जब सुनते और पढ़ते हैं उसके बाद और ज़्यादा एंग्जाइटी और परेशानी बढ़ जाती है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी परेशानी ये है कि वो फेसबुक पे कुछ लोगों को देखते हैं कि वो तो ऐश कर रहे हैं तो हम पीछे रह गए, किसी की परेशानी ये है कि मेरा वेट बढ़ गया है, ऐसी भी परेशानियां हैं। इसमें भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं और ये वाकई ऐसी बात है। किसी को अपनी अपीयरेंस की परेशानी है कि मैं ऐसी हूं और फलां ऐसी है, तो हर तरह की हैं परेशानियां। हर एक के मसले मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन परेशान हर कोई है, स्ट्रेस में हर कोई है, और ऑन टॉप ऑफ इट जो हालात हैं वो और ज्यादा स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। तो जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिर्फ हमारे लिए नमाज रोजे के लिए नहीं थी कि नमाज रोजा कैसे करना है, हज कैसे करना है, आपने किस तरह से दीन के इन अहकामात पे अमल करना है, सिर्फ इसलिए नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए हर फेज में नमूना है, हर फेज में एग्जाम्पल है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही आपने औलाद का गम नहीं देखा? क्या बेटियों की तलाकें नहीं देखी? क्या उन्होंने अपने साथियों की शहादत नहीं देखी, जब बईरे माउना की, जब सहाबा शहीद हो गए थे, 70 सहाबा को ले गए धोखा देकर कि हम इनसे दीन सीखना चाहते हैं और जाकर उनको शहीद कर देता, क्या आपके लिए वो सदमा नहीं था? क्या आपके घर में ऐशो आराम था? क्या फाके नहीं होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में? क्या आपको अपना घर बार छोड़ना नहीं पड़ा? क्या आपको मुनाफिकीन की साजिशों से निपटना नहीं पड़ा कि अपने के वो भेस में दुश्मन है, वो मतलबी लोग के जो वक्त के वक्त, जिस वक्त जरूरत का वक्त हो, काम आने का वक्त हो, उसी वक्त पीठ दिखा दे, क्या उनसे सामना नहीं करना पड़ा? क्या वो लोग जो हर वक्त इस कोशिश में रहे कि किस तरह से इनको सताया जाए, क्या उनको फेस नहीं करना पड़ा? क्या अपनी बीवी के ऊपर तोहमत नहीं लगी? क्या क्या हालात नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे? क्यों ना उनसे सीखे। और अल्लाह ताला ने जब हमें बता दिया कुरान में कि उनकी जात उस्वा है हमारे लिए, तो फिर कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं। जब अल्लाह ताला हमारे लिए उनकी जिंदगी को एग्जाम्पल बना देता है तो इसका मतलब है कि हम जिस भी सिचुएशन में हैं हमें उनकी जिंदगी से कोई रहनुमाई जरूर मिलेगी। ना सिर्फ उनकी जिंदगी से बल्कि और भी जितने पैगंबर गुजरे हैं, आप देखें उन सब की जिंदगियों में हमारे लिए रहनुमाई है। हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए रहनुमाई इसमें है कि हम इस तरफ को आए और उनसे सीखें कि हम कैसे कोप करें आज के हालात को। और जब हम खोलते हैं कोई पोस्ट, जब हम कोई बात पढ़ने लगते हैं तो ऐसी ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती हैं, ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं कि परेशानी इस हद तक बढ़ जाती है इंसान की कि वो कोई काम करने के काबिल नहीं रहता। इस हद तक आज हम पहुंच चुके हैं। और ऐसी ऐसी वीडियोस भी हैं कि उनको शेयर करना इटसेल्फ एक बुरा काम है, इसलिए कि या तो आप इतने डिप्रेस हो जाएंगे कि आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे, या नंबर टू क्या होगा, आप बेहिस हो जाएंगे, आपका दिल सख्त हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक बुराई को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं और देखते रहते हैं, तो आज जैसे पहले वक्त में कोई किसी को खून की, किसी की कत्ल की बात सुनता था तो एक बहुत बड़ी बात होती थी, आज हमारे सामने वो बताते रहते हैं 70 वहां पे मारे गए, 80 वहां पे, हमारे लिए बस नंबर है वो, क्योंकि हम बेहिस हो चुके हैं। हमारे सामने टीवी पे वो दिखाते हैं लाशें पड़ी हुई, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता, क्योंकि हम इतना उसको देखते हैं कि या तो बेहिस हो जाएंगे या डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक तो चीज होगी, अगर आप सेंसिटिव इंसान है तो आप डिप्रेस रहेंगे, और अगर आप स्ट्रांग है तो आप बेहिस हो जाएंगे। हम आज देखेंगे तमाम ही एंगल से कि हमें क्या करना है हमारी जाती जिंदगी में, और उम्मत के ऊपर जो मसाइल हैं, क्या बिल्कुल बेहिस होके बैठ जाएं, क्या हम देखा ही ना करें, क्या हम खबर सुने ही ना, क्या हमें बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए इन चीजों पे, या कोई तवज्जो देनी चाहिए कि तवज्जो के काबिल हैं ये, या हम मगन रहे अपनी जिंदगी में और अपने मसाइल के लिए हम क्या करें, क्या करें हम ऐसा कि हम इन चीजों में ना जाएं। क्योंकि औरतों में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, औरतों में बहुत टू मच है कि औरतें जाहिर है सिंफ नाजुक हैं, कमजोर होती हैं, आसाबी तौर पे भी कमजोर होती हैं, तो वो जल्दी इस चीज में चली जाती हैं कि वो डिप्रेस हो जाती हैं, उनको एंजाइटी होती है। जो आज मैं बातें बताऊंगी, बहुत सारी बातें इनमें ऐसी हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए मैं खुद आपको ऐसे ही नहीं, कोई किताबें बातें नहीं बता रही, कोई किताब से पढ़ के आपको सुना रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि हम इन चीजों का कैसे पॉजिटिव इनको लें, कैसे इसका इलाज करें, किस तरह से इससे गुजरें, कैसे हम इनको कोप करें, क्योंकि ये हटेंगी नहीं, ये वन आफ्टर अनदर होगी। तो ये याद रखें कि जैसे मौसम को हम चेंज नहीं कर सकते ना, आज अगर बादल हैं तो कौन सा सदर है या अमीर आदमी है या कोई पावरफुल आदमी है जो आज धूप निकाल के दिखा दे, नहीं निकाल सकता ना, ये कंट्रोल में नहीं है ना हमारे। इसी तरह जिंदगी के बहुत सारे मामलात हैं, समझ लें कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में, वो आउट ऑफ कंट्रोल है हमसे। उनमें मेरी हो सकता है शादी किसी गलत जगह पे हो गई, हो सकता है कि दुनिया के हालात हों ऐसे, मेरे कंट्रोल में नहीं है, और शादी जहाँ पे हो गई वहां पे हो गई है। हो सकता है कोई और मसले ऐसे हों, औलाद नहीं हो रही है, कोई बीमारी है, नहीं जा रहा वो मसला हमसे, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन अब हमने जीना है, उसमें रहना है, कैसे रहें फिर? तूफान है लेकिन हमने खड़े रहना है, कैसे खड़े रहेंगे? और जैसे मैंने बताया, मिसाल दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि तूफानों में खड़े रहे या नहीं, अगर वो डाई डाउन हो जाते तो आज तक आप तक ये दीन पहुंचता ही नहीं। अगर वो एक मसले को लेकर बैठ जाते कि बदर से अभी फतह हुई और वापस आए और आगे क्या पता चलता है, बेटी की वफात की खबर मिल जाती है, तो अगर वो इन मसलों को लेकर बैठ जाते और डिप्रेस होके बस एक कोने में हो जाते, अपने आप को आइसोलेट कर लेते, कैसे दीन फैलता बताएं? तो नहीं फैल सकता था। तो इन चीजों से हमने फिर देखना कि वो क्या करते थे, वो कैसे निकलते थे, वो कैसे चलते रहते थे। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये ना सोचें, हाय मेरे साथ ये मसले, हाय दुनिया के इस वक्त ये मसले, हाय हर दौर में अपने अपने मुताबिक मसले रहे हैं। सिर्फ आज ये बात है कि हमें आज पता चल जाते हैं दूर दूर की भी खबरें, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कभी मसले नहीं रहे। वर्ल्ड वॉर्स हुई, कितने लोग उनमें मारे गए, आप लोग खुद सर्च करके देख लें। हिटलर ने कितने लोगों को गैस चैम्बर में डाला, आप खुद सर्च करके देख लें। तो ऐसा नहीं है कि पहले जमाने बड़े अच्छे थे जी, आज हमारे जमाने में बहुत तकलीफें, ऐसा हरगिज नहीं। मसले हमेशा से रहे हैं, तकलीफें रही हैं, परेशानियां रही हैं, और ये आगे भी रहेंगी, बल्कि आगे आगे का जो वक्त है, हदीस में आता है कि कुर्बे कयामत के वक्त में ज्यादा खून रेजी होगी, कत्लो गारत बहुत ज्यादा होगा, बेचैनी बहुत ज्यादा होगी, फितने बहुत ज्यादा होंगे। फितने क्या चीज होती है? आजमाइशें, इम्तिहान बहुत ज्यादा होंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे किन किन चीजों से, खौफ से। खौफ ये होता है ना, हाय फ्यूचर में क्या होगा, हाय अब ये लॉ पास हो गया, हाय अब फलां सदर बन गया, हाय अब ऐसे हो गया, हाय अब क्या होगा, हाय हमारे बच्चों का क्या होगा, हाय हमारा क्या होगा, ये सब क्या है? खौफ, फियर्स। शैतान इंसान को दो चीजों के साथ शिकार करता है, फियर और गम। जिसके अंदर खौफ बैठ गया वो भी कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा, और जो गमजदा हो गया, तो मैं सारा दिन सोफे पे लेटी रहूं, गम मना रही हूं, तो मैं क्या करूंगी बताएं, मेरी एनर्जी खत्म। जो गम में पड़ जाता है ना, उसकी एनर्जी डाई डाउन हो जाती, खत्म हो जाती, वो कोई पॉजिटिव करने काम करने के काबिल नहीं रहता। बल्कि यहां तक भी है कि औरतें अपने घर संभालने के काबिल भी नहीं रहती, अपने बच्चों को देखने के काबिल नहीं रहती, इतना ज्यादा उनके ऊपर ये तारी हो जाता है। और फिर वो आपको दे देते हैं पिल्स कि आप सोते रहें, ये उनके पास इलाज है। आप उनके पास चले भी जाएं, ये नहीं मैं कह रही कि डॉक्टर के नहीं जाना चाहिए, बाज दफा हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कोई ऐसी मसाइल हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर कहता है आपका सारे मसले आपके सही है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे? नींद की गोलियां देकर सुलाए रखेंगे, ये कोई हल नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम जरूर तुम्हें टेस्ट करेंगे, इसका मतलब ये समझ लें एक बात तो कि यहां पे परफेक्शन कभी नहीं मिल सकती। ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं बन सकती। चाहे मैं और आप कितनी भी कोशिश कर लें, हम करते बहुत कोशिश हैं कि जन्नत बन जाए, कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई गम ना हो, जिंदगी आसूदा गुजर रही हो, ना कोई बीमारी आए, ना कोई कुछ आए, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसे वैसे चल रहा हो। किसकी नहीं ये ख्वाहिश? ये ख्वाहिश अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत में पूरी हो सकती, दुनिया में नहीं हो सकती। किसने आपको कहा कि दुनिया जन्नत है? बल तो उसी रूनल हयात दुनिया, तुम तो इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरत तो खैर व अबका, आखिरत है जो बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। आखिरत है जो बेहतर है। तुम्हें लगता है कि ये दुनिया सब चीज है, इसी को मैं जन्नत बनाऊं और इसी के अंदर पता नहीं मैंने रहना। नहीं, जिसने जन्नत बनाने के लिए पैसा जमा भी कर लिया, उसके पास घर भी है, गाड़ियां भी, सुकून उसको भी नहीं है। उसको भी ये लगता है हाय ये चली जाएगी मुझसे, और कुछ नहीं तो उसको ये खौफ पड़ा हुआ, और वो वाकई चली जाती है, क्योंकि या तो वो खुद दुनिया से चला जाता है या वो दुनिया उसे चली जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया खौफ से, सबसे पहली चीज खौफ बताई है, और हम कम से कम इसमें कैटलिस्ट ना बने, हम इसके अंदर पिचिंग ना करें कि खौफ जहां हम बैठे, तुम्हें पता है हाय आज ये हो गया, अल्लाह वो हो गया। अब आपने अपना फियर ट्रांसफर कर दिया दूसरे को, अब वो दूसरा एंग्जाइटी लेके घर जा रहा है, पता नहीं क्या होने लगा। हम क्या करते हैं अपनी मजलिसों में भी हम खौफ फैला रहे हैं आज। नहीं, इसमें मैं अपने आप को भी, सबको मैं कह रही हूँ, सबसे पहले मैं सुनने वाली हूँ, फिर हम सब, हम अपनी बातों में देखें कि मेरे से खौफ तो नहीं ट्रांसफर हो रहा आगे। मैं पॉजिटिव बात करूँ, नेगेटिव बातें ना करूँ। कोई नेगेटिव बात क्या होगी, मेरे ऊपर तो असर कर रही है, वो पूरी मजलिस वो इफेक्ट लेकर घर जाएगी। आज आप देख लें जिस मजलिस में आप बैठेंगे, सियासत में बात होगी वो उसमें गालियां दे रहे हैं, हालात में बात होगी उसमें गालियां दे रहे हैं, जो आपसे बात होगी उसमें बुरा भला कह रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हम सब नेगेटिव हो चुके हैं। उम्मत की जैसे मत नहीं मारी जाती, मत मारी गई है जिसको कहते हैं। एक इसराइली रिवायत है कि मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह मेरी उम्मत से और जो कुछ मर्जी ले लेना, इनसे अकल ना लेना। अल्लाह ताला ने फरमाया जब किसी कौम की हलाकत का वक्त आता है तो सबसे पहले उसी अकल ही जाती है, अकल मारी गई है हमारी। कि खौफ तो शायद हो या नहीं हो या पॉइंट समथिंग हो, हमने उसको 100 तक पहुंचा दिया। हम खौफ में रहना ये शौक रखते हैं कि हम खौफ में रहें, और फिर आगे आगे कुछ लोगों को ये आदत होती है कि जब उनसे बात करें उन्होंने कोई तुम्हें पता है ऐसा हो गया, तुम्हें पता ही होगा, उनके पास सारी वो खबरें होती जो नेगेटिव हैं। ऐसे लोगों से परहेज करें जो नेगेटिव चीजें फैलाएं। और वल जू आई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुसी व समरात, और भूख से भी अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, और मालों और जानों और समरात फलों के नुकसान से भी अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा। यानी ये आजमाइशें होंगी, फिर इस आजमाइश में क्या है, व बशीर साबिरीन, सबर करने वालों के लिए खुशखबरी है। जो लोग सबर के साथ चलते रहेंगे इन हालात में कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। आज बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया कि मुश्किलात मसाइब से टेस्ट किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नेमतों से टेस्ट किए जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में बड़े बड़े कोई मसले नहीं है, उन्होंने मसले जैसे बनाए हुए हैं, आए उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। अब उसने यही मसला बना दिया, मैं खूबसूरत क्यों नहीं लग रही, मेरा फिगर ऐसा क्यों नहीं है, उन्होंने इसको मसले बनाया हुआ। तो खुद के क्रिएटेड मसले हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो उनकी आजमाइश नेमतों से है, उनके पास नेमतें ही इतनी हैं, अब मसला कोई है नहीं तो उन्होंने इन चीजों को मसला बना लिया। तो नेमतों से भी अल्लाह आजमाता है। अगर मैं उनमें से हूं जिसको नेमतों से आजमाया जा रहा है, तो तब भी समझ जाए कि टेस्ट मेरा भी हो रहा है। अगर उसका टेस्ट हो रहा है जो किसी मुसीबत में है, तो टेस्ट मेरा भी हो रहा है। और इस टेस्ट में हम सोचते हैं ना, आज टेस्ट तो दोनों तरह के, मेरे ऊपर वो वाला टेस्ट आ जाए जिसमें नेमतें मिलती हों, वो ना आए जिसमें तकलीफें हों, है ना, हम ये सोचते हैं। लेकिन आप याद रखें, अगर किसी के ऊपर तकलीफ आ रही है ना, और मुझे नेमतों से अल्लाह टेस्ट कर रहा है, तो आखरत में वो बिला हिसाब किताब जन्नत में चले जाएगा, और मुझे तो सवाल देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, मुझे उन नेमतों की पूछ होगी और जवाब तलबी होगी। तो वो यहां पे आपको लग रहा है कि ये बेटर नहीं है, मैं बेटर हूं, ये तो बेचारा मुसीबत में पड़ा हुआ है, अल्लाह के हाँ वो बेटर पोजीशन में होगा। यहां तक कि एक हदीस में आता है कि बाज लोग कयामत के दिन जब सबर करके जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा होगा उनको बिला हिसाब किताब, तो वो लोग जो दुनिया में ऐश करते रहे हैं ना, जिनको कोई मसले नहीं थे, ऐश करते रहे हैं, वो कहेंगे काश दुनिया में हमारी जिल्दें कैंचियों से काट ली जाती हैं और हम सबर करते तो आज हम भी बगैर हिसाब के किताब के जन्नत में चले जाते, क्योंकि आखिरत की मुश्किलात बहुत बड़ी हैं दुनिया के मसाइब से। आज कोई कितनी भी मुश्किल में है, आपके पास कितना भी बड़ा मसला है, कितना भी बड़ा मसला है, लेकिन जितना भी आपका बड़ा गम हो वो एक दिन खत्म हो जाने वाला है मौत के साथ ही, उसका एंड हो जाना है। अगर मेरा वो मसला है जिसका मैं कहती हूं इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं, मसलन किसी का कोई प्यारा दुनिया से चला गया, अब वो इसमें डिप्रेस है, वो कहता है इसका कोई हल नहीं, वापस नहीं ला सकते, हाँ ठीक है बात, लेकिन ये मसला कब खत्म हो जाएगा, जब वो मर जाएगा, वो भी वहीं चला गया, वो भी चला गया, कौन है अभी तक जिंदा बैठा हुआ, जिनके लिए 100 साल पहले कोई रो रहा था आज वो भी नहीं है, और जिनके लिए रो रहे थे वो तो पहले ही चले गए, दोनों ही नहीं, तो इसलिए ये मसले खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा कयामत के दिन, जिनके बहुत प्रॉब्लम है ना, जिनके बहुत गम है, कयामत के दिन एक गोता जन्नत में लगेगा और उनको दुनिया के तो सारे गम भूल जाने, सिर्फ एक गोता, सिर्फ एक समझ लें एक डुबकी डाली और निकाल लिया, तो उनको ये याद भी नहीं रहेगा कि हमने कभी कोई गम देखा था, पूछा जाएगा कभी कोई गम देखा था, कभी कोई गम देखा ही नहीं, कभी कोई गम देखा, इतनी जल्दी ये दुनिया के गम भूल जाएंगे इंसान को, इतनी जल्दी इनसे पीछा छूट जाएगा। और जिसने ऐश किया यहां पे, अल्लाह को भुला के अगर यहां पे रहा तो एक गोता जहन्नुम के अंदर होगा और उसको दुनिया के सारे ऐश भूल जाएंगे, तो फिर बताओ कि फायदे में कौन रहा, और फिर बताओ कि फोकस किस पे करना चाहिए, इस पे कि हमारा खात्मा बिल खैर हो जाए, हमारा ईमान पे खात्मा हो जाए, हमने जिन मसलों को बड़ा बना लिया वो हो सकता है, हर एक बंदा सोचता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मसला इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कोई उतने गम में नहीं है जितनी मैं गम में हूं ना, हर एक इंसान ये सोचता है जो किसी भी प्रॉब्लम में है, लेकिन होता क्या है अगर वो देखे तो हो सकता है उसका मसला इतना बड़ा ना हो, क्योंकि कोई मसला भी मौत के मसले से ज्यादा बड़ा नहीं है, अल्लाह के आगे खड़े होने के मसले से ज्यादा बड़ा नहीं है, ये कि हमारा खात्मा खैर पे हो जाए इससे ज्यादा बड़ा कोई मसला नहीं है, तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए कि मेरा खात्मा बिल खैर हो जाए, ईमान पे मेरा खात्मा हो जाए, मैं दुनिया से जाऊं तो ऐसे नेक अमल के ऊपर जाऊं कि जब मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूं तो सुरखरू हो जाऊं। और अल्लाह के सामने खड़े किस हालत में होंगे, जिस हालत में हम दुनिया से गए, जिस अमल पे हम दुनिया से गए, और क्या हमें पता है कि हमारा कौन सा अमल आखिरी अमल होगा, किस वक्त हमें मौत आएगी, नहीं पता ना, तो इसका मतलब है कि जिंदगी में हमेशा नेक अमल करते रहो, क्योंकि उसी पे खात्मा होगा, उसी पे जाना होगा, तो असल फोकस खात्मा बिल खैर पे होना चाहिए। फिर आप ये एक बात देखें कि मसले बड़े कैसे होते हैं, मसले ऐसे बड़े होते हैं कि जिस वक्त हम उनके ऊपर सोचते हैं, उनके ऊपर गौर करते हैं, उनको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, ये नहीं आपको कोई कह रहा कि आप अपने मसले का कभी कोई हल ही ना सोचे, नहीं हल सोचना है और हल के लिए कोशिश भी करनी है, और कहीं अगर किसी जगह पे भी कोई भी मसलन बीमारी है तो उसके हल के लिए आप डॉक्टर के भी जाएंगे, आपका कोई बेरोजगारी है, कोई घर में कोई फकरो फाके का मसला है तो उसके लिए जॉब भी तलाश करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने बस सोचना ही नहीं कभी, अब चलो छोड़ो हमने नहीं इसके ऊपर सुन, ऐसा नहीं है, उसके हल को तलाश करेंगे लेकिन मसले को दिमाग पे हावी नहीं होने देना, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां आती है, अंबिया की सारी जिंदगी में देखिए प्रॉब्लम्स आई और वो गमगीन भी हुए, ऐसा नहीं है कि वो कभी गमगीन ही नहीं होते थे जी, कोई रोबोट्स नहीं थे, ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं गमजदा हुए थे, आपने सीरत पढ़ी है क्या, आप देखते नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दफा गमजदा हुए, और वो अगर आपको याद हो सीरत में वो वक्त कि जिस वक्त आजाब का वक्त था, यानी लश्कर सारे जमा होके आ रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि बनू कुरैजा ने भी गद्दारी कर ली है, तो आप अपनी सीरत की किताबों में उठा के देखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या था, चित लेट गए थे और बहुत देर लेटे रहे और इतने ज्यादा गमगीन थे, उसके बाद आप उठे और अल्लाहु अकबर कहा और सहाबा को खुशखबरी दी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कभी गमगीन ही नहीं हुए थे जी, वो हर वक्त बस उनके तो मसले भी होते थे लेकिन वो कभी उनको कोई गम ही नहीं होता था। क्यों? क्या वो रोबोट है? क्या वो इंसान नहीं थे? इंसान जो होता है ना, इंसान के साथ खुशी भी होती है, गम भी होता है, वो महसूस करता है। एक जब किसी बच्चे की वफात हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बह गए, उस वक्त सहाबा जो थे वो हैरान हो गए कि आप रो रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो अल्लाह की रहमत है, यानी दिल का नरम होना तो अल्लाह की रहमत होती है। ये नहीं कि आपको गम नहीं होता था, किसी की वफात भी हो जाए तो आप वैसे ही रहते थे, ऐसा नहीं था। तो इस बात को समझिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा या अंबिया और इन सारों की जिंदगियां देखें, गम आया, वो गमगीन भी हुए लेकिन उन्होंने गम को तारी नहीं कर लिया। प्रॉब्लम कहाँ है जब हम गम को हावी कर लेते हैं कि जैसे यानी मेरी सारी जिंदगी ये गम ही है, मैं सो रही हूं तो उस गम में, मैं जाग रही हूं तो उस गम में, मैं जी रही हूं तो उस गम में, मैं मर रही हूं तो उस गम में। यानी एक चीज को मिसाल के तौर पे किसी के पास औलाद नहीं है तो बस वो सारा वक्त इसी के अंदर है, इसी को दिमाग में ठहरा लिया कि जैसे कुल जिंदगी यही है, जो इतनी नेमतें उसके पास है वो सब भूल के उसको बस वो एक महरूमी याद है। अगर किसी के घर में बीमारी है तो उसको बस ये लगता है कि बस सब चीज अब खत्म हो गई, उसका दिमाग सारा वक्त उसी के ऊपर फोकस करता है। याद रखें, जिस चीज को आप फोकस करेंगे वो ही बड़ी ही हो जाएगी और वो आपको अपने अंदर गर्क कर लेगी। जिस चीज को आप छोड़ देंगे सोचना और कहीं और फोकस करेंगे तो वो चीज फिर साइड पे रह जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसमें हमें अपने आप के ऊपर खुद वर्क करना होगा, खुद ब खुद नहीं हो जाएंगी चीजें। आज आप लेक्चर सुन के जाएंगे तो आप बदल गए, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट कि आप उस वक्त जब वो जहन के अंदर आए चीज, उस वक्त औज़ु बिल्ला पढ़े, उस वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़े, मेरी तो कोई कुव्वत नहीं है अल्लाह, सारी तो कुव्वत तेरी है। उस वक्त पॉजिटिव बात को कोई सोचे। देखें, याद रखें, शैताना सबसे नेगेटिव बात डालता है। अगर किसी को बीमारी है, हाय मुझे ये बीमारी, अब तो मैंने मर ही जाना, हाय फलां को देर हो गई, तो जरूर उसका एक्सीडेंट ही हो गया होगा, हाय फलां का ऐसे हो गया, कुछ जरूर अब यही होगा। नहीं, थिंक पॉजिटिव। हमारा दीन हमें यही करता है, पॉजिटिव रहना सिखाता है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से पॉजिटिव रहा करते थे कि वो जो जंगे आजाब थी उसमें खंदक खोद रहे हैं, सहाबा भूख से परेशान है और उस वक्त यानी इतनी किल्लत थी और गजा की और खौफ इतना था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मैं तो किसरा के महल्लात देख रहा हूँ, मैं तो रूम और उनके महल्लात देख रहा हूँ, मैं वो कामयाबियां देख रहा हूँ, वो फतुहात। कैसे बकअप करते थे अपने सहाबा को, और मुनाफिकीन उस वक्त कहते थे लो देखो जरा इनके पास दुश्मन आ रहा है और ये वो वहाँ की बातें करने लगे हैं सुपर पावर्स को फतेह करने की। द वे ही वॉज पॉजिटिव, अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिव थे। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, उदास हो जाना, परेशान हो जाना एक बात है, गम भी होना ये एक बात है और ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल पेसिमिस्टिक हो जाना, बिल्कुल नेगेटिव हो जाना ये दूसरी बात है कि इंसान मायूस हो जाए, अब नहीं कुछ हो सकता, अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो कभी हालात सही हो ही नहीं सकते, अब तो ऐसा ही रहेगा, उसमें नहीं जाना, उस वक्त इससे निकलना है। और इसके अंदर एक सूरा बड़ी जबरदस्त है जो आप लोगों को मैं कहूंगी कि, और जहां पे दूसरे मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगी, वहां पे एक सूरा है जो बहुत ज्यादा तसल्ली देती है, बहुत एक समझ लें एक रेमेडी है, एक दर्द का इलाज है, दुखों का इलाज है, और वो सूरा है सूरा दुहा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तब उतरी जबकि काफिर ना मजाक करना शुरू हो गए थे कि बड़े दिन से तुमने कोई कुरान नहीं सुनाया, तुम्हारे पर वही नहीं आई क्या, लगता है तुम्हारे खुदा ने तुम्हें छोड़ दिया है, वो तुमसे नाराज हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गम नहीं था कि ये मुझे बातें सुना रहे हैं, लेकिन चूंकि वही के आने में बहुत ब्रेक आ गया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फील हो रहा था कि पता नहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मेरा अल्लाह नाराज हो गया मुझसे। देखिए जब इंसान के ऊपर मुश्किल आती है ना, वो सोचता है हाई पता नहीं अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया। एक तो गम अपनी जगह होता है, साथ ये जो डिप्रेशन हो जाता है ना कि अल्लाह तो नहीं नाराज हो गया, हाई मुझसे कोई ऐसी चीज तो नहीं होगी कि अल्लाह ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। वो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आई तो अल्लाह ताला ने ये सूरह उतारी। ये सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए थी, लेकिन ये हम सब के लिए एक समझ लें कि एक दवा है। अल्लाह ताला ने एक इलाज बता दिया हम सबको और हम सब भी इससे तसल्ली ले सकते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो तसल्ली थी, तमाम मोमिनों के लिए इसमें तसल्ली है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वह दुहा, कसम है कौन से वक्त की, दुहा के वक्त की। दुहा का वक्त कौन सा है, एक वक्त होता है ना बिल्कुल सुबह सवेरे का वक्त, उस वक्त इतनी चहल पहल नहीं होती, एक दुहा का वक्त होता है 8-9 बजे का वक्त, बिल्कुल हसल बसल सब, यानी रौनक, यानी दिन। दिन क्या है, लाइफ। जब बिल्कुल दोपहर हो जाती तब भी बहुत स्ट्रांग होती है सूरज की जो गर्मी होती है, वो भी बेचैन कर देती है, लेकिन दुहा का वक्त बड़ा खूबसूरत वक्त है। उसकी कसम खा के बताया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मैसेज मिल गया है कि दिन निकल आया, अंधेरे दूर हो गए, और फिर वल्लैली इज़ा सजा, रात के जब वो छा जाती। तो देखिए रात का भी आना क्या है, वो भी एक खैर होती है, क्योंकि जब रात किस चीज को डिपेक्ट करती है, परेशानी गम या अंधेरे जिंदगी के। अगर कभी कोई गम ही ना आए तो शुक्र गुजारी कहां से आएगी, अगर कभी गम ही ना आए तो नेमतों का एहसास कैसे होगा, अगर कभी गम ही ना आए तो इंसान अल्लाह से करीब कब होगा। तो रात भी जरूरी है, दिन भी जरूरी है। मा वद्दा का रब्बू का वमा कला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है और वो आपसे नाराज भी नहीं है। अगर देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें तसल्ली दी गई ना, तो हम सब के लिए भी ये तसल्ली है कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। हर चीज के ऊपर ये सोचने ना, ये प्रॉब्लम आया ना, बस अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। अब इंसान जो पहले टूटा हुआ था वो बिल्कुल ही टूट के गिर जाएगा, नहीं। आप मोमिन हो तो आपके पास जब ईमान की दौलत होती है ना, तो आप फिर हर बात में क्या कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप अल्लाह से तो और करीब हो जाते हो, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपसे नाराज नहीं है। क्योंकि ये चीज इंसान के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होती है, और ये ख्यालात आते हैं कि वाकई पता नहीं ऐसा हो गया, बस अल्लाह नाराज हो गया। वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल उला, और आखिरत आपके लिए दुनिया से भी ज्यादा अच्छी। क्या मोमिन के लिए आखिरत दुनिया से ज्यादा अच्छी नहीं है, बताइए कैसे पता चलता है। एक हदीस से पता चलता है ना कि मोमिन के लिए दुनिया क्या है, कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। तो मोमिन के लिए आखिरत बेहतर है दुनिया से, मोमिन के लिए वहां पे जन्नत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह से मुलाकात है। तो गम ना करो, ये दुनिया ही तो है, तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा मिलने वाला। ये कितनी पॉजिटिव बात है कि आप इस सोचते हो कि हाँ वाकई ये तो जल्दी से खत्म हो जानी है, और वहां पे मेरे लिए इतना अच्छा सब रखा हुआ अल्लाह ताला ने। और फिर वला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, अन करीब आपका रब आपको वो देगा कि आप राजी हो जाएंगे। क्या मोमिन को अल्लाह वो नहीं देगा कि वो राजी हो जाएगा? क्या जन्नत मिलना अल्लाह की रजा नहीं है? क्या उसका दीदार अल्लाह की रजा नहीं है? अन करीब मिलेगा, यानी ये जल्दी तो खत्म हो जाने, ये मसले तुम्हारे गम तुम्हारी परेशानियां ये खत्म हो जानी है, जल्दी देगा वो, तुम्हें राजी कर देगा। क्या जन्नत में जाके अल्लाह ताला पूछेगा नहीं, आपको नहीं वो हदीस पता, अल्लाह ताला पूछेगा आप राजी हो, तो जन्नती क्या कहेंगे, अल्लाह हम तो राजी ही राजी है। अल्लाह ताला फरमाएगा कुछ और चाहिए, नहीं अल्लाह हमें और क्या चाहिए, तूने तो सब कुछ हमें दे दिया, अल्लाह तुम्हें राजी कर देगा। इंसान के पास कुछ होगा ही नहीं मांगने को, कहेगा अल्लाह मैं राजी, अल्लाह ताला फरमाएगा अब मैं तुम्हें वो देता हूं जो इससे पहले नहीं मिला था, कि मैं तुम्हें अपनी रजा दे देता हूं कि मैं इसके बाद तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। अल्लाह राजी कर देगा तुम्हें, मोमिन को भी अल्लाह राजी करेगा। फिर अलम यजिद का यतीमन फआवा, इतनी प्यारी बात है ये कि तुम इन हालात को सोच रहे हो ना। देखिए आप एक डिप्रेस बंदे को सोचें जिसके पास बहुत परेशानी है, उसको अल्लाह ताला क्या बता रहा है, पास्ट को देखो, अपने माजी को देखो। और हर इंसान सोचे कि मैं पहले भी तो प्रॉब्लम्स में गई थी और मुझे अल्लाह ने निकाला ना उन प्रॉब्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बताया जा रहा है, अलम यजिद का यतीमन, क्या आप यतीम नहीं थे तो हमने आपको ठिकाना दिया, याद नहीं है वो वक्त जब आपके पास कोई भी नहीं था, ना माँ थी ना बाप था, अल्लाह ने आपको ठिकाना नहीं दिया। एक बच्चे का सोचे, उसको आप सोचते हैं यतीम बच्चे को मैंने पैसे दे दिए, टॉयज लाके दे दिए, बस का दिल बहल गया। वो जो एहसास अंदर होता है ना कि मेरे सर पे छत नहीं है, यानी मेरा बाप नहीं है, मेरे ऊपर साया शफकत नहीं है, और वो जो एहसास होना कि इस दुनिया में बाकी लोगों के माँ बाप हैं जो उनकी फिक्र करने वाले हैं, मैं सोता हूँ मेरी फिक्र करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, ये एहसास बहुत ज्यादा इंसान को शैटर कर देता है। यतीम होना ऐसे ही नहीं, यतीम के बारे में इतना कुरान में जिक्र है, क्योंकि आप उसको पैसों से नहीं बहला सकते, आप उसको चीजों से नहीं बहला, वो जो उसके अंदर महरूमी होती है ना उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कि वो जो बाप का जो हाथ है उसके सर पर, वो उसको कॉन्फिडेंस देता है, वो उसको खड़ा कर देता है, उसके पास वो हाथ नहीं है, वो अपने आप को इस दुनिया के अंदर अकेला समझता है। आप आके थोड़ी देर के लिए आप उसको चीज दे के आप तो चले जाएंगे, आपका मतलब है उसकी महरूमी दूर हो गई, नहीं हो सकती। जैसे दूसरे बच्चे होंगे ना जिनके पास बाप है, उनके पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास कोई है, मेरे ऊपर कोई है, एक वो बच्चा जो यतीम है जिसके सर पे बाप नहीं है, वो उस चीज को इसको लैक करता है, वो इस चीज को नहीं महसूस कर सकता, उस कॉन्फिडेंस को जो दूसरे बच्चों के पास है। क्या आप यतीम नहीं थे तो हमने आपको ठिकाना दिया? यानी हम सब सोचें, कोई ना कोई तो जिंदगी के अंदर मराहिल ऐसे आए, पहले भी ऐसे प्रॉब्लम आए होंगे, याद करें उनको जिनमें से अल्लाह ने हमें निकाला, आए ना। और फिर वो वजह का दौलन फहदा, आप राह गुम कर चुके थे, हमने आपको रास्ता दिखा दिया। मैं और आप कहां थे? बाजारों के अंदर, या लोगों से फोनों पे बातें करते थे सारा दिन, या टीवी के सामने बैठे होते थे? अल्लाह ने हमें राह दिखाई ना, अल्लाह ने हमें कुरान का रास्ता दिखाया ना, अपने रास्ते पे लगाया ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं याद करो उन बातों को, मैंने कैसे कैसे पास्ट में भी तुम्हारे सर पे हाथ रखा, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारे मसले हल किए थे ना। और फिर वो वजद का आइलन फागना, पहले भी आप जब फकीर थे अल्लाह ने आपको गनी कर दिया, क्या गनी नहीं कर दिया? हम सब सोचें, हम जब इन मुल्कों में आए हमारे पास क्या था और आज क्या है? जब हमारी शादियां हुई तो हम और हमारे हस्बैंड उनके पास क्या था और आज क्या है? क्या अल्लाह ने आपको गनी नहीं कर दिया, उससे ज्यादा नहीं दे दिया? फिर अब क्या करो? अब फिर आगे रेमेडी दे दी। देखिए अब पास्ट को अल्लाह ताला ने फरमाया कि सोचो उस पास्ट को, अब इंसान को हौसला होता है, हाँ जिस रब ने मुझे उस वक्त थाम लिया था ना वो अब भी थामेगा, रब तो वही है ना, उसने मुझे उस वक्त उन मसलों से निकाला था ना, वो अब भी निकालेगा मुझे। फिर अल्लाह ताला ने देखो कैसी प्यारी बात है, अल्लाह ताला ने अपने से नीचे की तरफ देखने का फरमाया, फअम्मल यतीम फला तकहर, अब तुम्हें कोई यतीम मिले उसको झिड़कना नहीं, उसको नहीं पीछे करना, वह अम्मल साइला फला तनहर, अब कोई साइल को है ना उसको रिजेक्ट ना करना। क्या बता दिया? तुमसे नीचे भी हैं लोग, तुमसे नीचे जो लोग हैं उनकी तरफ देखो, कोई लोग हैं दुनिया में जो यतीम है, कोई ऐसा है जो साइल है, जो किसी से मांगता है तो उसको दो वक्त की रोटी मिलती है, उसके घर में रोटी नहीं है, उसके घर में रोटी नहीं है। अब वो जो हाथ उठाना है ना, किसी के आगे हाथ फैलाना है ना, ये इंसान अपनी गैरत को मारता है, अपनी अना को मारता है, तब उसका हाथ उठ सकता है। फिर जो जवाब देने वाला है ना, वो कभी तो एक रोटी रख देगा और कभी कहेगा जाओ, कभी झिड़क देगा, उसको झिड़को मत, उसको झिड़को मत। के फरमाया देखो उसकी महरूमी को देखो, तुम तो खा रहे हो, तुम तो पी रहे हो, तुम तो बड़े हो गए, उस यतीम बच्चे को तो देखो कितना वल्नरेबल है वो दुनिया में, तुम तो बड़े हो, तुम वो उसकी तरफ जब देखोगे ना कि ये यतीम बच्चा ये कैसे जिंदगी गुजार रहा होगा, ये कैसे दुनिया में घूम फिर रहा होगा। आप आज देखें, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें जो सीनियर रेफ्यूजीज आए हैं या जो वहां पे हैं, वो बच्चे हैं और उनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, जब आप उनकी तरफ देखते हैं ना, तो हम मैं और आप इतने एडल्ट्स होके अपने मसलों को समझते हैं, हाय हमारा मसला सबसे बड़ा, मेरा गम सबसे बड़ा, मेरा गम सबसे बड़ा कैसे हो सकता है जब मैं उसकी तरफ देखूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के मामले में किस तरफ देखो? अपने से नीचे की तरफ देखो। दीन के मामले में किधर देखो? अपने से ऊपर की तरफ देखो। दुनिया के मामले में ये ना देखो आए देखो ये मैंने देखा है आज कि देखो मेरी दोस्त कितने ऐश कर रही है, फलां जगह वेकेशन पे गई हुई है, फलां कर रही है, उसके बच्चे भी हैं, उसके सब घर अच्छा चल रहा है, उसके उसका शौहर भी इतना अच्छा है, उसके सब मसले सॉल्व है, और मैं देखो मैं किस में फंसी हुई हूं, ये मत सोचो नीचे की तरफ देखो, ये सोचो कि अगर अगर मेरा शौहर ऐसा है तो कोई और ऐसी होगी जिसके पास शौहर ही नहीं है, जिसका शौहर फौत हो गया, फलां को देखो। अगर मेरे घर में कोई बीमार है तो देखो फलां वो तो बीमारी के अंदर ऐसा हो गया कि बिल्कुल बेड रिडन है, कब से कई लोगों का पता चला वो कोमा में है, साल हर साल गुजर चुके हैं कोमा में ही पड़े। अगर मैं बीमारी में हूं तो आज मैं उसके इलाज के लिए कहीं जा सकती हूँ, वो देखो फलां वो तो अपनी बीमारी के लिए इलाज भी नहीं करा सकता। अपने से हमेशा नीचे की तरफ देखो तब शुक्रगुजारी आएगी। अगर मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो नॉर्मल ही नहीं है, कोई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास औलाद ही नहीं है। मेरा एक नाफरमान बच्चा वो उसकी दुआएं वो करते हैं कि अल्लाह हमें बच्चा तो मिल जाए चाहे जैसा भी हो। तो अपने से नीचे की तरफ देखोगे तो तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी के जज्बात होंगे, फिर तुम ये वाकई इस चीज को कर सकोगे, इसका इतराफ करोगे कि अल्लाह मेरा गम सबसे बड़ा नहीं है, मुझसे ज्यादा है कोई लोग जो परेशान है, मैंने ऐसे ही इस गम को इतना हावी कर लिया। फिर देखो तो उस साइल को मत झिड़को, वह अम्मा भी नियामत रब्बी का फहदिस, जो नेमत अल्लाह ने तुम पर किया उसको बयान करो, उसका जिक्र करो, उसको आगे बताओ। यानी फोकस किस पे करो, जो नेमत है तुम्हारे पास। हम सोचते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो सिवाय गमों के और कुछ भी नहीं। नहीं, तलाश करें, आपकी जिंदगी में है नेमतें, वो आपको नजर नहीं आ रहे, हम ब्लाइंड हो चुके हैं, हमें नेमत नहीं नजर आती, हमें गम नजर आते हैं। वो गम इतने बड़े डेवल बन के हमारी तरफ आते हैं और हमें डराते हैं, और वो जो नेमतें जो हमारे इर्द गिर्द इतनी बिखरी पड़ी हैं उनको फोकस करो। ये एक रेमेडी ऐसी बता दी, एक ऐसा इलाज अल्लाह ताला ने बता दिया कि जब आप नेमत को फोकस करोगे ना, आप देखोगे कि आपके अंदर खुशी के जज्बात पैदा होते, फिर आप पॉजिटिव रहने लगते हैं। फिर आपको पता है वो कहते हैं कि 5% है जो 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 लोग वेस्ट में रहते हैं ना और नेमतों के अंदर हैं, ये 5% है दुनिया की पॉपुलेशन का। इसका मतलब 95% पॉपुलेशन आपसे कम हालात में रह रही है, उनके पास पानी भी नहीं है पीने को कि वो साफ पानी पी ले। जब वो दिखाते हैं तो वो वाकई वो पानी भी ऐसा होता है उसके अंदर तो मट्टी नजर आ रही होती है, वो वहीं से पी रहे होते हैं जहां से जानवर पी रहे हैं, लेकिन हमें नेमते नजर ही नहीं आती। हम नलका खोलते हैं, चल रहा है, गर्म आ रहा है, ठंडा, ये तो नेमत है ही नहीं। हम कहते हैं नहीं, असल में मुझे ये चीज मिलेगी तो फिर मेरी जो कुछ चैन आएगा, और बाकी कोई भी नेमते हैं वो कोई नेमत है ही नहीं। हालांकि उनमें से भी कोई छिन जाए तो फिर हमें पता चलेगा कि कितनी बड़ी नेमत हम इस्तेमाल कर रहे थे, हमने आज तक एहसास ही नहीं किया इस बात का। तो अल्लाह ताला दिखाता है कि देखो तुम इन नेमतों को फोकस करोगे, तुम्हारे डिप्रेशन दूर हो जाएंगे, तुम्हारी परेशानी एंग्जाइटियां दूर हो जाएंगी। और हर एक सोच सकता है, नहीं मिल रहा, तलाश करो, तलाश करें कि क्या है वो नेमत जो मेरे पास, क्या है नहीं, क्या हैं वो नेमतें जो मेरे पास हैं, क्योंकि वो बेशुमार हैं, वो बेशुमार हैं। और देखें दूसरी चीज, अल्लाह ताला के जो नाम है ना वो हमारे लिए इतनी प्यारी तसल्ली है, इतनी प्यारी तसल्ली है कि अगर आप उनमें गौर व फिक्र करेंगे तो आपके दिल को सुकून मिल जाएगा, चैन आएगा। आप अल्लाह ताला ने अपने नाम क्यों ऐसे बताए, इसलिए कि वो हमें बताना चाहता है कि मैं ऐसा हूं। अगर अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ पैगंबरों के ऊपर और जो उसके औलिया हैं और जो नेक बंदे हैं सिर्फ उनसे मोहब्बत करने वाला होता तो वो हमें अपना नाम अलबदूद ना बताता। अगर अल्लाह ताला हमारी केयर ना करता और सिर्फ चंद एक लोगों की केयर करता तो वो अपना नाम यहाँ पे रब्बुल आलमीन ना कहता, रब्बुल नबीयीन और रब सालेहीन कहता, वो रब्बुल आलमीन है। अगर वो सब पर रहम ना करने वाला होता तो वो अपना नाम अर्रहमान और अर्रहीम हमें ना बताता। अगर वो हमारी केयर ही ना करता, उसको परवाह ना होती, तो वो अपना नाम अल हफीज हमें ना बताता। अल्लाह ताला अगर हमारी सुनता ही ना और वो सिर्फ चंद एक लोगों की सुन रहा होता तो उसको क्या जरूरत थी हमें बताने की कि मैं अल मुजीब हूं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं। अगर वो सिर्फ चंद लोगों के करीब होता तो वो क्यों कहता कि मैं अपने बंदे से करीब हूं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ माफ उनको करता जो कि उसके प्यारे चंद एक होते तो वो क्यों कहता جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ بھی مجھ سے معافی مانگے, میں سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا, وہ بھی میرے ہی بندے ہیں, ان کو اپنے بندے کیوں کہتا؟ تو جتنا جتنا آپ اسماء حسنہ میں غور کریں گے آپ دیکھنا کہ یہ لائف چینجنگ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو اتنا پیار آتا ہے پھر اپنے اللہ کے اوپر کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا بھی مجھے چھوڑ جائے, میرا اللہ جو ہے میرے ساتھ. اس کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے, اس کے پاس پناہ ہے, ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, اس کی پناہ میں آتے نہیں ہیں, اور سہارے ڈھونڈتے ہیں, اور وہ سہارے ویک ہیں. جب وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں, پھر جب وہ ہمیں کوئی کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ہاں, اس لیے کہ ہم نے اصل سہارے کو چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ کا کوئی ایسا غم ہے اور آپ کسی ایک بندے سے شیئر کر کے اس کو ہلکا کر سکتے تو کر لیں اس کو, کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر, یہ بھی انسان کا کتھارسز ہو جاتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ اپنے اللہ کے سامنے روئیں, کیونکہ وہ السمیع ہے, وہ سننے والا ہے, وہ العلیم ہے. آپ سوچتے ہیں کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے, کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کرنا, اور واقعی نہیں لوگوں کو آتی, بس ہر ایک نہیں سمجھ سکتا آپ کے مسئلے کو, لیکن وہ کہتا ہے میں العلیم ہوں, میں علم والا, مجھے پتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ وہ کیا پتا ہم کس مسئلے میں, وہ کیا جاننے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس کا مطلب اس نے سمجھا ہی ہوگا کہ میں اٹھا سکتی ہوں تو میرے اوپر ڈالا نا, اس نے سمجھا ہی ہوگا کہ میں اس قابل ہوں تو میرے اوپر ڈالا نا. اس بات کو سمجھیں کہ وہ اس کے علم میں ہے, وہ مجھے کچھ سمجھتا ہی ہے تو اس نے میرے اوپر ڈالا. اس نے اپنے انبیاء پہ سب سے بڑی مشکلات ڈالی تھی, اگر اس نے مجھے چنا ہے ان مشکلات کے لیے تو اس کا مطلب وہ مجھے کسی قابل سمجھتا ہے. تو یہ ایک ریمیڈی ہے کہ انسان اسماء حسنہ کی طرف آئے. تیسری چیز ہے قرآن. قرآن جو ہے یہ شفا ہے, شفا. یہ قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شفا ہے. یہ نہیں میں کہتی کہ جو قرآن کی طرف آئے گا اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, یہ نہیں میں کہتی, مگر میں یہ کہتی ہوں دعوے سے کہ جو قرآن کی طرف آئے گا قرآن آپ کے دل کا مرہم بن جائے گا, یہ تسلی دے گا آپ کو, اور ویسی تسلی دے گا جیسی کسی کے الفاظ دے ہی نہیں سکتا. یہ اس طرح سے آپ کو سمجھائے گا باتیں جو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا, یہ ایسے آپ کو تھام لے گا نا کہ جیسے کوئی تھام نہیں سکتا, یہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا, یہ آپ کے دل کو ایسے کام ڈاؤن کر دے گا. لیکن یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس قرآن کی طرف آتا ہے, اور یہ آپ کی زندگی سے نکلے گا تو آپ کو لگے گا کہ میں لاسٹ ہو گئی ہوں. جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے اچھی طرح کہ اس کا زندگی سے نکلنا ایسے ہے کہ انسان لاسٹ ہو گیا. اس کو جتنی دیر ساتھ رکھیں گے, یہ اللہ کی رسی ہے جو آپ کو بھی چلتا رکھے گی, آپ نے تھام لیا ایک مضبوط رسی کو, اس کے بعد آپ گریں گے نہیں. آئیں گے طوفان زندگی میں, آپ گریں گے نہیں. پھر اگلی چیز ہے دعا. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہتھیار ہے, چاہے آپ کے پرسنل مسئلے ہیں, امت کے مسئلے ہیں, کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, غم ہے, جیسا بھی ہے, دعا ہتھیار ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے. اس کا مطلب جب یہ ہاتھ اٹھیں گے نا تو یہ بھر کے ہی آئیں گے واپس, اس کو غیرت آتی ہے میں کیسے اس کو خالی لوٹاؤں, اس کو غیرت آتی ہے کیسے وہ آپ کو خالی لوٹا سکتا ہے. ہاں مگر ہمارا یقین ہے, یہ یقین کے ساتھ پکارو, یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کرو یہ مت کہو کہ اللہ اگر تو چاہے تو پھر یہ کر دینا, یہ کبھی نہ کہنا, کیونکہ اللہ چاہے گا ہی تو ہوگا, آپ کے کہنے سے تھوڑی ہے کہ وہ نہیں بیچارہ تو تب بھی ہو جائے گا, ایسا نہیں. یہ کہیں اللہ کر دے, بس اللہ یہ کر دے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اللہ اگر اس میں خیر ہو کسی معاملے میں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, لیکن یہ مت کہیں اگر اللہ تو چاہے تو کر دے. یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ سن رہا ہے اور وہ ضرور قبول کرے گا, اور ان اوقات کو تلاش کرو جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ اوقات تہجد کیا ان میں اللہ کو پکارو, وہ اوقات آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیے کہ وہ کون سے اوقات ہیں, آپ ان میں اللہ تعالیٰ کو پکاریے, اور اس یقین کے ساتھ پکاریے کہ اب میرے جو ہاتھ اٹھے ہیں نا انہوں نے خالی نہیں نیچے ہونا, یہ بھر کے ہی آئیں گے. फिर एक बात का यकीन रखिए कि जो शर भी मुझे पहुंच रहा है वो कभी शर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला वो है बियदी कल खैर, तेरे हाथ में खैर है। जो मुझे शर नज़र आ रहा है इसमें भी मेरे लिए खैर है, जो मुझे तो कोई नहीं खैर नज़र आ रही, तो मेरी अकल कितनी है, मुझे कितनी समझ है, लेकिन इसमें खैर है। बस ये मेरा ईमान है कि इसमें ही खैर है। वो आज मुझे नहीं भी नज़र आए, लेकिन जब अल्लाह है ही खैर और उसकी तरफ से सब खैर के फैसले, तो ये शर कैसे हो सकती। हाँ, हमें शर नज़र आती हैं, तो अब वो खैर कैसे बन सकती है। एक उसका रास्ता ये है कि वो इंसान के गुनाहों को झाड़ने का जरिया बन जाए। मैंने कहा दुनिया में अगर इंसान को कितनी भी तकलीफ मिल जाए, कितनी भी तकलीफ मिल जाए, आखरत की तकलीफों से फिर भी वो कम कम है। वो जितनी भी आप सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में, वो कितनी भी बड़ी मुसीबत है मगर आखरत की मुसीबत से फिर भी हल्की है। वहां पे तो अदना तरीन जो किसी को सजा मिलेगी वो ये होगी कि उसके जूते वो आग के हो गए और उससे उसका दिमाग खोलने लगा। ये हल्का तरीन अजाब है और वो इसके अंदर होगा। कौन है दुनिया के अंदर जो इस तरह से हो। यहाँ की तो बड़ी से बड़ी मुसीबत है, आप कंपेरिजन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हल्की ही है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मशहूर हदीस है, आपने फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है। उसको नेमत मिलती है तब भी उसके लिए बेहतर है, उसके लिए खैर है। उसके ऊपर मुसीबत आती तब भी खैर है उसके लिए। कैसे? कि जब नेमत मिलती है, जब खुशी उसको कोई मिलती है, वो शुक्र अदा करता है, उसमें भी उसको अजर मिलता है। जब उसके ऊपर गम आता है, वो सब्र करता है, उसमें भी उसके लिए अजर है। दोनों सूरतों में उसके लिए अजर ही अजर है। इसका मतलब है कि दोनों में ही खैर है। खुशी मिल रही उसमें भी खैर है, गम मिल रहा है उसमें भी खैर है। और फरमाया कि कांटा भी मोमिन को चुभता है तो उससे भी उसके गुनाह झड़ते हैं। कांटा कितनी देर के लिए चुभता है? ऐसे चुभता है ना, ऐसे चुभता है, कितनी देर लगी, स्प्लिट ऑफ अ सेकंड, राइट। और वो गम जो हमारे जिंदगी में साथ चलते ही जाते हैं, वो कितने लंबे होते हैं। जब इस प्रिक से गुनाह झड़ते हैं तो उनसे कितने झड़ रहे होंगे बताएं, कि हर हर लम्हे झड़ रहे होंगे। जितनी जिंदगी आपके गुनाह झड़ते जा रहे हैं, तो फिर ये तो नफे का ही सौदा हुआ। और फिर जो इंसान मुसीबत के वक्त में अल्लाह से करीब आता है, वो खुशी में नहीं आ पाता। जितनी भी हम कोशिश कर लें, आप देख लें, हम शादियां देख लें, हम अपने और कोई कामयाबियां देख लें, पता नहीं इंसान को क्या हो जाता है, वो आपे से ही बाहर हो जाता है। उसको कोई याद ही नहीं रहता रब, फिर भी आप गम के घर में देखेंगे कोई कुरान खोल ही लेगा। खुशियों के घरों में आपने कितना कुरान खुलते देखा, कितनी नमाजें पढ़ी हुई देखी लोगों को, फर्ज नमाजें तक छूट जाती हैं। और जब गम होता है तो सब अल्लाह तौबा की बातें कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इंसान गम के वक्त में ज्यादा अल्लाह से करीब होता है। वो चीज जो अल्लाह से करीब कर दे वो खैर है कि शर है? हैं, वो तो खैर ही है ना, हमें लगता है शर है। तो इसलिए हमें नहीं मालूम कि क्या चीज जो अल्लाह ने मेरे लिए फैसले किए हैं, इनमें मेरे लिए क्या क्या खैर छुपा के रखी हुई है, किस किस तरह वो मुझे खैर पहुंचाना चाहता है, कैसे कैसे वो मुझे मेरे दर्जे बुलंद करना चाहते हैं। कोई इंसान जन्नत में उस ऊंचे दर्जे पे नहीं पहुंच सकता। फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह वो कैसे इस दर्जे पे पहुंचेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसको बीमार करके मैंने इसको सब्र दे दिया कि उससे मुझे वो दर्जे पा लेगा। वैसे नहीं पा सकता था, अपने अमल से नहीं पा पा रहा कि वो उस पद तक पहुंच जाए, क्योंकि उससे इतनी नेकियां ही नहीं होती। अल्लाह ने उसको एक मुसीबत में डाला ताकि वो इसमें सब्र करके ऊपर के दर्जे पा ले, वरना वैसे ना जा सकता। हम नहीं जानते अल्लाह के किस काम में कहाँ पे खैर छुपी हुई है। हम नहीं जानते कि उसके फैसले किस तरह हमारी बेहतरी के लिए, और फिर हम क्या करते हैं, उससे गिले शिकवे करते हैं, उससे नाराज होते हैं, उसकी शिकायतें लोगों को करते हैं, मेरे साथ ये कर दिया अल्लाह ने, मेरे साथ वो कर दिया। तो एक ये दुआ बहुत बड़ा हथियार है। तो इसी तरह सुबह और शाम की दुआएं हैं, वो हमारे लिए हिफाजत है, उनसे भी हम शर से बच सकते हैं। उनसे पहले से समझ लें कि एक एहतियाती तदबीर है कि इसके जरिए हम शर से बच जाएं। उसमें सब में देखिए हिफाजत भी है, आफियत भी है, जो कुल हैं उनके अंदर भी हमारे लिए क्या है, हमारी हिफाजत है। हम अल्लाह के लिए कोई फेवर नहीं कर रहे, उसमें हम अपना ही भला कर रहे हैं, अपने लिए हिफाजत की दुआएं कर रहे हैं। देखिए इसलिए इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। अगर कोई कुरान से करीब नहीं है, कुरान के करीब आ जाए, ये आपके मसलों को ऐसे हल्का कर देगा, भारी नहीं लगेंगे, वो हल्के नजर आएंगे। फिर اس سے قریب ہو جائیں, اپنی نمازوں کی حفاظت کر دیئے, اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ذکر شامل کیجئے, اس سے کیا ہوگا, شیطان دور بھاگے گا. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان دور بھاگتا ہے. شیطان قریب آئے گا آپ کو ڈپریس کرے گا, شیطان دور جائے گا آپ مطمئن ہو جائیں گے, کیونکہ وسواس شیطان ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, بڑا ڈپریس تھا, پریشان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تمہارا غم دور ہو جائے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا سکھائی جو صبح اور شام مانگنے کو فرمائی, کہ صبح اور شام یہ دعا کرو, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ مجھے غم سے, انگزائٹی, پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لے, والبخل والجبن, اور یہ ساری اس کے اندر مطلب ایک ایک کر کے چیز ہے. اس کے بعد اینڈ میں کیا ہے کہ اللہ مجھے غلبے سے, قرض کے غلبے سے, اور اللہ آدمیوں کے غالب آ جانے سے, کہ کوئی حکومت ہے یا کوئی اور لوگ ہیں وہ میرے اوپر غلبہ پالے, اس سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اس میں سستی اور کاہلی سے بھی اللہ کی پناہ میں آنا ہے, اس میں بزدلی سے بھی اللہ کی پناہ میں آنا ہے, اس میں بخل سے بھی اللہ کی پناہ میں آنا ہے. وہ ساری چیزیں جن سے ہم چاہتے ہیں ہم ان سے بچیں, کیونکہ بعض دفعہ ہم نیکی سے کس لیے دور ہو جاتے, سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے. سستی ہمیں اٹھنے ہی نہیں دیتی. اور یہ ساری چیزوں سے پناہ مانگ لی گئی, 6-8 چیزیں اس کے اندر ہیں, تو ان سب سے پناہ مانگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا ان صحابی کو سکھائی تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی اللہ نے میری پریشانی دور کر دی اور میرے قرض کو ادا فرما دیا. اور یہ صبح اور شام کی دعاؤں کے اندر انسان شامل کرے, اور وہ انہوں نے بھی صبح اور شام پڑھی. تو ریمیڈیز ہمیں بتائی گئی ہیں, ہمیں بتایا گیا ہے کیسے کیسے ہم نے بچنا ہے ان چیزوں سے. کیونکہ دیکھیں جب یہ غم ہے, جب انسان کو کسی کام کا ہی نہیں چھوڑے گا تو یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ آپ کسی کام کے ہی نہ رہے, آپ ڈپریس ہی رہتے رہیں, آپ سوتے ہی رہے. تو وہ جو سوتا رہے گا, ڈپریس رہے گا, وہ کیا کام کرے گا؟ اس لیے یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے. اس شیطان کے حربے سے نکلنے کی ہم کوشش کریں, اور وہ صرف ایک طریقہ, ہم اللہ کی پناہ لے لیں, وہ ایک سیف جگہ ہے ہمارے لیے. کیونکہ شیطان سے اور کسی طرح بچ نہیں سکتے, شیطان آپ کو اوپر, آپ کو ٹیک اوور کر کے رہے گا اگر آپ اللہ کی پناہ میں نہیں آتے. اور اس کے اندر فوکس اللہ کی ذات پر رہے, اپنے پرابلم پہ نہیں, اللہ کی ذات پہ رہے, کہ ان اللہ اللہ کل شئین قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ضرور میری رہنمائی کرے گا, اللہ ضرور مجھے راستہ دکھائے, اللہ ضرور مجھے اس مشکل سے نکالے گا. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب کھڑے ہوئے ہیں, آگے ریڈ سی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, ہاں, اور اوپر سے لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں, آپ نے ہمیں یہاں پہ مروانا تھا, یہاں پہ لا کے ہمیں پھنسا دیا. آپ خود سوچیں, آپ کسی کو لے کر گئے, آپ نے 8-10 فیملیز اکٹھی کی, آپ نے کہا میں آپ کو پکنک پہ لے کے جاتی ہوں. اب جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ تو تھا ہی نہیں کوئی, کچھ جگہ ہی نہیں تھی, کوئی پارک ہی نہیں تھا. آپ کو ٹینشن ہو جائے گی, ہائے میں ان سب کو لے کر آئی, سب کی ذمہ داری تو میرے اوپر ہے. اتنی سی چیز کے اوپر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں سمندر کے وہاں پہ کھڑے ہوئے, اب پوری قوم کو تو وہ لے کر آئے نا, سب ان کو تانے دے رہے, آپ ہی لائے تھے نا ہمیں, یہاں پہ لا کے ہمیں مارنا تھا, کیوں لے کر آئے ہمیں؟ لوگوں کا فوکس کس پہ تھا؟ لشکر پہ, اور آگے سمندر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ انما یا ربی سیہدینی, میرے ساتھ میرا رب ہے نا, وہ مجھے راستہ دکھائے گا. ان کی نظر کس پہ ہے؟ نہ تو سمندر پہ ہے, یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ آگے سمندر ہے, وہ دیکھ رہے ہیں سمندر ہے آگے, ان کو یہ بھی پتا ہے لشکر ہے پیچھے, لیکن ان کے فوکس میں کیا ہے؟ فوکس میں یہ نہیں ہے, فوکس میں یہ ہے کہ اللہ ہے نا, وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. ان نمائی یا ربی, کتنا کانفیڈینس ہے نا, ہمیں یہ کانفیڈینس آتا ہے, ان نمائی یا ربی سا یہدی, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا, یعنی اس مسئلے سے مجھے ضرور نکالے گا. اللہ نے سمندر پھاڑ کے رکھ دیا, اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی؟ کیا اللہ ہمارے مسئلوں میں ہمارے لیے سمندر نہیں پھاڑ سکتا؟ تو جو ہر چیز پر قادر ہے وہ نکالتا ہے اس رستے سے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا, جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پتا تھا کہ سمندر پھٹ جائے گا, ان کو کہاں پتا تھا, مگر ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ نکالے گا, کوئی راستہ پیدا کرے گا, اور اس نے کر دیا, اس نے کر دیا. وہ جب انسان بھروسہ کرتا ہے نا اپنے اللہ پر, تو اللہ ضرور راستہ نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں. اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ میرا اللہ میری سنتا ہے نا, وہ ضرور سنے گا, अगर आपका ये गुमान है कि मेरा अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर सकता है तो वो जरूर कर देगा। अगर आपका ये गुमान है कि मेरा अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकालेगा तो वो जरूर निकाल देगा। लेकिन मेरा गुमान कैसा है, ये सोचे कि मेरा गुमान कैसा है मेरे रब के बारे में। ऐसा ही जैसे इंसानों के बारे में या किसी और तरह से है कि वो ज़ात हर चीज पर कादिर है, क्या ऐसा गुमान। हम लोगों से तो बदल होते हैं, वो मतलबी, वो फलाने, वो फलां, और उसके बाद डिप्रेस होके लेट जाते। अल्लाह तो मतलबी नहीं है, उसने तो आपको तब से पाला जब आपका कोई भी नहीं था, जब आप माँ के पेट में थे, माँ का भी अपना बस नहीं था, अल्लाह ने उस वक्त भी आपको पाला वहां, उस वक्त भी आपको नरिश किया वहां, दुनिया में आके भी आपकी हिफाजत की। माँ नहीं कर सकती हिफाजत, माँ तो एक बच्चा सीढ़ियों से गिरने लगता है, माँ उसको नहीं पकड़ सकती। तो अल्लाह अल्लाह हफीज ने आपकी निगहदाश्त की ना, उसने आपकी हिफाजत की ना, क्या वो अब ना करेगा। जब आप बेबस थे उस वक्त की, तो क्या अब जब आपके पास ताकत आ गई क्या इस वक्त ना करेगा। तो अपने आप को अल्लाह पे गिरा दे ना, अपने आप को अल्लाह पे छोड़ दे, वो थाम लेगा। हम छोड़ के तो देखे, हम उसको वकील बना के तो देखे, उसमें भरोसा करके तो देखे, कमी हमारे भरोसे में होती है, भरोसा करके देखे, फिर देखे जैसे उम्मे मूसा का दिल अल्लाह ने थाम लिया था, कैसे उनका दिल हो रहा था, कैसे वो पैनिक हो रही थी, मेरे बेटे को डाल दिया इसमें समंदर में क्या होगा। कोई आपको इम्कान लगता है कि ये बच्चा बचेगा, 1% .001% शायद चांस हो कि ये बच्चा बच सकता है, किधर समंदर में पता नहीं किधर चली जाए टोकरी। कैसे अल्लाह ने बचाया और उनके दिल को थाम भी लिया, सुभान अल्लाह। रास्ता भी अल्लाह निकालता है और दिल भी अल्लाह थामता है। अल्लाह ताला हम सबके दिलों को थाम ले इसी तरह, और अल्लाह ताला हमारे हर मसले से हमें निकाल दे, और अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी तरफ मायल रखे, मायूस ना हो हमारे दिल कभी भी, अपनी रहमत की तरफ रखे अल्लाह ताला। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानल्लाहि लाज़ीम, सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानल्लाहि लाज़ीम, सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानल्लाहि लाज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رحمن يا رحيم يا ذو الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. अल्लाह हम कई दफ़ा तेरे ऊपर भरोसा नहीं करते और असबाब पे भरोसा करने लगते हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हम तुझसे उम्मीद छोड़ देते हैं और मायूस होने लगते हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर देना, अल्लाह हमें माफ़ कर देना। अल्लाह हमें वो ईमान अता फरमा जो पहाड़ों की तरह मजबूत हो। या अल्लाह ताला हमारा ईमान कभी मुतजलजल होने लगता है, अल्लाह ताला तू हमें इस पर माफ़ फरमा देना। अल्लाह हम सबको थाम लेना, अल्लाह ऐसी आजमाइशों से बचाना जो ईमान की आजमाइशें हैं। अल्लाह हर किस्म की आजमाइशों से हम सबको महफूज रखना, हम तो आजमाइशों के काबिल ही नहीं हैं। अल्लाह हम बहुत ही कमज़ोर हैं तेरे बंदे, अल्लाह बहुत ही कमज़ोर हैं। अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमाना, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाना, हमारी औलादों की ईमानों की हिफाजत फरमाना, हमारे ख़ानदानों की ईमानों की हिफाजत फरमाना, हम सबका खात्मा बिलखैर फरमाना, ईमान पे हमें खात्मा अता फरमाना। या अल्लाह कलमा तैयबा नसीब फरमाना मरते वक्त, या अल्लाह अपनी रज़ा अता फरमाना। अल्लाह दुनिया से जाएँ तो इस हाल में जाएँ कि तू हमसे राज़ी हो, अल्लाह दुनिया से जाएँ तो इस हाल में जाएँ कि तू हमसे राज़ी हो। अल्लाह ताला
हम सब के मसलों को हल फरमा दे। अल्लाह हम सब के मसलों को हल फरमा दे, हमारी सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों में आफियत अता फरमा। हम सब की बीमारियों को दूर फरमा दे, हम सब की अंदरूनी मेरूनी बीमारियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह ताला जिनके घरों में परेशानियां, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जिनकी औलाद ना फरमाने, अल्लाह उनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह ईमान हमारे मजबूत रखना, अल्लाह हमारे ईमानों को मजबूत रखना। अल्लाह जो पढ़ा है सुना है इसको कबूल फरमा लेना। या अल्लाह हमें कुरान की रस्सी से जोड़ दे, अल्लाह हमें कुरान की रस्सी से जोड़ दे, और ऐसा मजबूत जोड़ दे कि मरते दम तक ये रस्सी हमारे हाथ से ना जाए। या अल्लाह ताला तू इस रस्सी को मजबूती से थामने वाला बना देना। या अल्लाह ताला हमसे नेकियों के काम करवा लेना, वो काम ले लेना हमसे जिनसे तू राजी होता हो। अल्लाह उन कामों से दूर रखना जिनमें तेरी नाराजगी हो। अल्लाह हर वो कॉल और फेल हमसे कराना जो हमें जन्नत से करीब कर दे, और हर उस कॉल और फेल से दूर रखना जो जहन्नम के करीब कर दे। या अल्लाह हम सबको आफियत दे, अल्लाह हम सबको अमान दे, अल्लाह हमारे सबके दिलों को थाम ले। या अल्लाह हम सबको सुकून अता फरमा, सकून कल्ब अता फरमा, अल्लाह कल्ब सलीम अता फरमा। अल्लाह ताला दिलों से बोझ और कीने और हसद और लालच दुनिया का ये सब निकाल दे। अल्लाह नफरतें निकाल दे, अल्लाह बोझ निकाल दे। या अल्लाह वो तमाम चीज़ें निकाल दे, निफाक निकाल दे, अल्लाह रियाकारी निकाल दे, तकब्बुर निकाल दे। अल्लाह वो सब चीज़ें जो तुझे ना पसंद है अल्लाह वो हमारे दिलों से साफ कर दे, धो डाल हमारे दिलों को, इनमें अपनी मोहब्बत डाल दे। अल्लाह अपनी मोहब्बत डाल दे, दुनिया की मोहब्बत निकाल के अपनी मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह हमारी दुआएं हमारे हर रिश्ते के लिए कबूल फरमा ले, हमारी औलादों के हक में कबूल फरमा ले, हमारे हर रिश्ते के हक में कबूल फरमा ले। जिन्होंने इस मजलिस को मुनक्किद किया है अल्लाह इसमें अपना, जिन्होंने भी हिस्सा डाला है, जिन्होंने अपने घर में रखा है, या अल्लाह ताला इसकी अजर अजीम इनको अता फरमाना, सदका जारिया बना देना, इनके तमाम मसलों को हल फरमा देना। इनसे जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, जो जिनके लिए इन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह ताला उनके घरों में सकून अता फरमाना। अल्लाह उन सबको सकून देना। या अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखरत की भलाइयां अता फरमा दे। या अल्लाह हमें ना दुनिया के मसले दिखा और ना आखरत के। या अल्लाह ना दुनिया की रुसवाई दिखाना ना आखरत की। या अल्लाह ना दुनिया के दुख दिखाना आखरत के। हम दुनिया के भी दुख नहीं सह सकते। या अल्लाह ताला तू अपनी रहमत से हमें माफ़ रखना। अल्लाह हमें अपनी रहमत से माफ़ रखना। अल्लाह हम इतने कमज़ोर हैं, हम यहाँ की भी थोड़ी थोड़ी परेशानियों के ऊपर बिल्कुल हम बिल्कुल अल्लाह ताला हिम्मत हार देते हैं। या अल्लाह ताला तू हम पे बोझ ना डालना। ये हम आखरत के मसले कहाँ सह सकते हैं। अल्लाह हम दुनिया के मसले नहीं सह सकते। या अल्लाह ताला तू हमें आफियत में रखना। अल्लाह हमें आफियत में रखना। जिनके घरों में ऐसी परेशानियां मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकियाँ, अल्लाह ताला तू इनकी नाचाकियों को मोहब्बत में बदल देना। या अल्लाह जहाँ पे भी जो भी मसले हैं, माली परेशानियां, उनको दूर फरमा देना। या अल्लाह जहाँ पे बच्चों के मसले हैं, अल्लाह बच्चों के मसलों को हल फरमा देना। या अल्लाह हमारे वालदैन पे अपना रहम फरमाना। अल्लाह उनको हर मोहताजी से महफूज रखना। या अल्लाह हमारे फौत शुदगान पे रहम फरमाना, उनकी कब्रों को कुशादा फरमाना। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाना। या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देना, उनकी बख्शिश फरमा देना। अल्लाह हम सब के लिए भी कब्रों को कुशादा फरमा देना, रोज़े हशर की रुसवाइयों से हमें बचाना। अल्लाह हमारा आसान हिसाब किताब लेना। या अल्लाह ताला जहन्नुम से और अपने हर अजाब से बचा के रखना। या अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देना, अपनी रहमत से दाखिल फरमा देना, अपना दीदार नसीब फरमाना, अपने नबी के हौज से पानी नसीब फरमाना। या अल्लाह हम तेरे प्यारे नबी की उम्मती हैं। या अल्लाह उस दिन हमें उनके सामने शर्मिंदा होने से बचा लेना। ना कुछ ऐसे काम ले लेना कि उनके सामने शर्मिंदगी ना हो, बल्कि उनको फख्र हो हम पे। या अल्लाह हमसे ऐसे काम ले लेना। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पे अपना रहम फरमाना। अल्लाह जहाँ जहाँ जो परेशान हाल है, अल्लाह ताला तू उनके गमों का मदावा कर दे, उनके घरों में उनको वापस आबाद फरमा दे। या अल्लाह जो भी उनके दुख है तू दूर फरमा दे। अल्लाह यो वो बेयारो मददगार पड़े में, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका तू होता है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला तू उनकी मदद फरमा। अल्लाह तू उनकी मदद फरमा, उनके दुख ना देखे जाते ना सुने जाते हैं। या अल्लाह तू उनकी मदद फरमा। अल्लाह तू उनकी मदद फरमा उन बच्चों की, अल्लाह उन बेवाओं की मदद फरमा। या अल्लाह तू उनको अपनी रहमतों में ले लेना। अल्लाह तू उनको अपनी रहमतों में ले लेना, वो तेरे प्यारे नबी की उम्मती है, उनको अपनी रहमतों में ले लेना। یا اللہ تعالیٰ اس ملک میں رہنا ہمارے لیے آسان فرما دینا، ہمیں یہاں کے فتنوں سے محفوظ رکھنا، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ظالم حکمرانوں سے بچانا، اللہ ظالم حکمرانوں سے بچانا، اللہ دین پہ چلنا آسان کرنا ہمارے لیے، دین پہ چلنا مشکل نہ کرنا، اللہ آسان کر دینا، مرتے دم تک اس دین پر قائم رکھنا۔ اللہ ہم کہیں کمپرومائز کرنے والے نہ بنے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں مضبوطی سے اس دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کے خوف دور کر دے، ہمارے غم دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری گھبراہٹیں دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے۔ اللہ شر والی رات اور شر والے دن سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، ناگہانی آفات سے محفوظ رکھنا، مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھنا، اللہ جانی مالی نقصانات سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام دعاؤں کو سن لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ تو قبول کرنے والا ہے، اللہ تو تجھے حیات ہی اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تو ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ ہماری بچوں کو صراط مستقیم پہ چلا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو دین دنیا اور آخرت کی نعمتیں، سربلندیاں، خوشیاں عطا فرما، عزتیں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، ان کے نیک نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اولادوں کے ساتھ رکھنا، اللہ آخرت میں بھی جنتوں میں یا اللہ درجات اولادوں کے ساتھ عطا فرمانا، ہمارے آبا کے ساتھ عطا فرمانا، اللہ وہاں پہ بھی جدائیاں نہ کرنا، اللہ کوئی پیچھے رہنے والا نہ ہو، اللہ تمام کو ملا دینا جنتوں کے اعلیٰ درجوں میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔